नमस्कार आदाब दोस्तों, समाचारों में जिस राजनीति का जिक्र होता है रोज, आखिर कैसे हुई थी उसकी खोज? राजनीति के दांव पेच और अधिकारों कर्तव्यों की सारी बातें जानना चाहते हैं तो सुने आज का राजनीति शास्त्र विशेष क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम।
डॉक्टर नंद किशोर शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक हूँ। मोबाइल वाणी ने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया, इसके लिए मैं उसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। यह पॉलिटिकल साइंस का 41वां एपिसोड है। इसके पूर्व शीत युद्ध काल में भारत और शीत युद्ध के संबंध में मैंने आपको जानकारी दी थी। इस एपिसोड में मैं आपको विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता की समाप्ति के संबंध में प्रारंभिक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूँगा। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ घटनाएं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से चली आ रही दो ध्रुवीय प्रणाली के विरुद्ध सिर्फ संकेत मात्र नहीं थी, वरन दो ध्रुवीयता के विरुद्ध विश्व जनमत की पुकार भी थी। 1961 में निर्मित बर्लिन की दीवार पूंजीवादी विश्व तथा साम्यवादी विश्व के बीच सिर्फ विभाजन का प्रतीक नहीं थी, वरन यह पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग भी करती थी। इस प्रकार बर्लिन की यह दीवार शीत युद्ध की उग्रता का सबसे बड़ा प्रतीक थी, क्योंकि इस दीवार के निर्माण में शीत युद्ध सबसे सरगर्म दौर में था। इस समय क्यूबा के मिसाइल संकट ने दोनों महाशक्तियों को आमने सामने खड़ा कर उनके बीच अनुयुद्ध की संभावनाओं को बढ़ा दिया था। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 सालों तक खड़ी रहकर दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की उष्णता का बखान करती रही। 9 नवंबर 1989 को आखिरकार वहां की जनता ने इसे तोड़कर दो ध्रुवत्व के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और सोवियत साम्यवादी गुट की समाप्ति की घंटी थी। इस घटना के बाद विश्व में और भी अनेक घटनाक्रम सामने आए, जिसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति से हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित जर्मनी के एकीकरण से सबक लेते हुए सोवियत संघ के खेमे में सम्मिलित पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने अपनी जनता के विरोध एवं प्रदर्शन को देखकर बारी बारी से अपनी साम्यवादी व्यवस्थाओं को बदल डाला। शीत युद्ध के अंतिम दौर में सोवियत संघ को चुपचाप अपने द्वारा स्थापित साम्यवादी व्यवस्था को ढहते हुए देखना पड़ा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह सब कुछ किसी सैन्य मजबूरी के चलते नहीं, वरन वहाँ की आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के चलते हुआ। 25 दिसंबर 1991 के दिन सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने त्याग पत्र दे दिया। 26 दिसंबर 1991 के दिन पूर्व संसद सुप्रीम सोवियत की अंतिम बैठक हुई। उस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सोवियत संघ की समाप्त करने एवं स्वयं को भंग करने की औपचारिकता पूरी की और इस प्रकार कानूनी तौर से सोवियत संघ समाप्त हो गया। सोवियत प्रणाली साम्यवादी शासन पद्धति से संचालित थी। सोवियत संघ में स्थापित साम्यवादी शासन व्यवस्था 1917 की बोल्शेविक क्रांति का परिणाम थी। बोल्शेविक क्रांति के पूर्व रूस में जार का शासन था। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, रूस भी इस युद्ध में सम्मिलित था और रूसी सेना को प्रत्येक स्थान पर पराजय का सामना करना पड़ा था। चारों तरफ भूखमरी, चोर बाजारी तथा काला धंधा का साम्राज्य था। शासन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त था और लोगों का जीवन दुभर हो गया था। ऐसी स्थिति में लोगों में क्रांति की भावना उभरी और देश के भीतर क्रांति की आग भीतर ही भीतर सुलगनी प्रारंभ हो गई। बोर्स टर्मर नामक व्यक्ति जार निकोलस का प्रधानमंत्री था। वह साधारण योग्यता का था, प्रशासनिक कुशलता का उसमें अभाव था। जार की पत्नी अलेक्जेंड्रा जादूगर रामपुटीन एवं प्रधानमंत्री बोर्स टर्मर के अत्याचारी शासन ने क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। निकोलस द्वितीय ने अपनी पत्नी का परामर्श स्वीकार करते हुए सेना का नेतृत्व स्वयं संभाल लिया। प्रशासन के अत्याचार से तंग आकर 30 दिसंबर 1916 को प्रिंस इस्लो और उसके साथियों द्वारा रासपुटीन का वध कर दिया गया। अंततः 12 मार्च 1917 की ड्यूमा की एक अस्थायी समिति ने स्वयं को देश की नई सरकार घोषित कर दिया और इस प्रकार रूस की जारशाही का अंत हो गया। 19वीं सदी में ही रूसी समाजवादी लोकतंत्रीय दल की स्थापना हो गई थी। इस दल के एक गुट का नेतृत्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता लेनिन कर रहा था, जिसे बोल्शेविक कहा जाता था। दूसरे गुट का नेतृत्व कर्नेस्काई कर रहा था। इस गुट को मेंशेविक कहा जाता था। कुछ समय बाद लेनिन द्वारा संचालित बोल्शेविक गुट ने ही साम्यवादी दल का नाम धारण किया। बोल्शेविक अस्थायी सरकार की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं थे और चाहते थे कि समस्त शक्तियां श्रमिकों की प्रतिनिधि सभाओं अर्थात सोवियतों को मिले। देश के कृषकों एवं श्रमिकों ने बोल्शेविकों का साथ दिया। अंततः लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर 1917 में श्रमिकों को विजय प्राप्त हुई। स्पष्ट है कि बोल्शेविकों ने क्रांतिकारी लेनिन के नेतृत्व में जारशाही एवं बुर्जुआ शासन का अंत किया और इस प्रकार विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य का गठन आरंभ हुआ। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के संबंध में लेनिन ने कहा था, यह अपना इतिहास तथा अपने नियमों का निर्माण कर रहा है। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।